आगे है जी सूरत अल हाका, क़यामत के नामों में पहले कौन सी सूरत पढ़ी थी? वाक़या, अब अल हाका और आगे भी कुछ सूरतें आएंगी। सूरत अल हाका 69 नंबर की सूरह है, 52 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाक़तुम अल्हाक़ा वमा अदराकुम अल्हाक़ा कज़्ज़बत थमूद वअदुम बिलकारिया। पहली 1 to 37 आयात है, रुकू नंबर 5 है। अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर पर ईमान लाना है। साबित होने वाली क्या है और तुम्हें क्या मालूम कि वो साबित शुदा क्या है। इस खड़का देने वाली को समूद और आत ने झुटला दिया था, जिसके नतीजे में समूद तो बेहद खौफनाक और ऊंची आवाज़ से हलाक कर दिए गए और आत बेहद तुंदो तेज़ हवा से गारत कर दिए गए, जिसे इन पर 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह ने मुसल्लत कर रखा। बस तुम देखते हो कि ये लोग ज़मीन पर इस तरह गिर गए जैसे खजूर के खोखले तने हों। लंबे लंबे इनके कद थे, ऐसी आंधियाँ और तूफान चले कि इनके सर कट के गर्दनों से लग हो गए। क्या इनमें से कोई भी तुझे बाकी नजर आ रहा है? फिरौन और इसके पहले के लोग और जिनकी बस्तियाँ उलट दी गईं, उन्होंने भी खताएं की और अपने रब के रसूल की नाफरमानी की। बिलाखिर अल्लाह ने इन्हें भी ज़बरदस्त गिरफ्त में लिया। जब पानी में तुगयानी आ गई तो इस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि इसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे और ताकि याद रखने वाले कान इसे याद रखे। मेमोरियल डेज बन गए वो। जबकि सूर में एक फूंक फूंकी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे और एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। इस दिन हो पड़ने वाली क़यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा और इस दिन बिल्कुल सुस्त हो जाएगा। इसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरे परवरदिगार का अर्श उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। क्या मंजर होगा वो। उस दिन तुम सब सामने पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भेद पोशीदा ना रहेगा। सोचे, कोई राज राज नहीं रहेगा। तो जिसका नाम है अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहने लगेगा, हाउ मुकरऊ किताबिया, लो मेरा नाम है अमाल पढ़ो। इन्नी जनन तो अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे मेरा हिसाब मिलना है। फ़हुआ फ़ी शतिर रादिया, वो एक दिल पसंद जिंदगी में होगा, बुलंद वाला जन्नत में जिसके मेवे झुके पड़े होंगे। उनसे कहा जाएगा, कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ़तुम फ़िलैया मिल खालिया। अपने इन अमाल के बदले जो तुमने गुज़श्ता ज़माने में किए, खाओ और पियो। आज मेहनत करें, वहाँ खाएं पियेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिससे कि उसके अमाल की किताब उसके बाएं हाथ में दी गई तो वो कहेगा, या लैतनी लमूत किताबिया व लम अदरी मा हिसाबिया। या लैतनी कानतिल काजिया, क्या कहेगा, काश मुझे मेरी किताब दी ही ना जाती और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है। काश के मौत मेरा काम ही तमाम कर देती। मागनानी मालिया, मेरे माल ने मुझे कुछ नफ़ा ना दिया। हलकनी सुल्तानिया, मेरा गलबा भी मुझसे जाता रहा। हुक्म होगा इसको पकड़ो, खुजू फगुल्लू सुम्मल जहीम असल्लू सुम्म फी सिलसिलतें ज़र उहा सबू नज़ीरान फसलुकू। हुक्म होगा इसको पकड़ लो, फिर इसे तौक पहना दो, फिर इसे दोजख में डाल दो, फिर इसे ऐसी जंजीरों में जिसकी पैमाइश 70 हाथ है जकड़ दो। बेशक ये अल्लाह अजमत वाले पर ईमान न रखता था और मिस्कीन के खिलाने पर रग़बत न दिलाता था। बस आज इसका ना कोई दोस्त है और ना सिवाय पीप के इसकी कोई ग़िज़ा है, जिसे गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। दुआ करें, अल्लाह मेरे पर्दे रख ले। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला एक मोमिन को अपने नज़दीक बुलाएगा, फिर इस पर अपना पर्दा डाल देगा। जैसे हम नहीं बच्चे को ऐसे छुपा लेते, ऐसे करके डालेगा और उसको छुपाएगा। फिर अल्लाह पूछेगा, तुझे अपना फुलां गुना याद है? याद है, वो याद है, याद है। बंदा इकरार करता जाएगा, अल्लाह बताता जाएगा। अब उसको यकीन आ जाएगा कि मैं हलाक हो जाऊँगा, क्योंकि अल्लाह ने इतने इकरार जुर्म करा लिए। फिर अल्लाह फरमाएगा कि मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों पर पर्दा डाला था और आज भी मैं तेरी मग़फ़रत करता हूँ। चुनाचे उसे उसकी नेकियों की किताब दे दी जाएगी। अल्लाहुम्मा जालना मिन्हुम। ये बुखारी की रिवायत 2441 है। हम सब के पर्दे ढके रहें तो अच्छा है। क्या सीखा, रसूल की नाफरमानी नहीं करनी, पिछले वाक़यात से सबक लेना है, अल्लाह ताला पर ईमान लाना है और मिस्कीन को खाना खिलाना है। आगे रुकू नंबर 6, 38 to 52। सूरत के एंड तक अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करनी है। फला उक्सिमु बिमा तुबसीरून, बस मुझे कसम है इन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और इन चीज़ों की भी जिन्हें तुम नहीं देखते, कि बेशक ये कुरान बुज़ुर्ग रसूल का कौल है, ये किसी शायर का कौल नहीं। अफसोस तुम्हें बहुत कम यकीन है, ना ये किसी काहिन का कौल है। अफसोस बहुत कम नसीहत ले रहे हो, ये तो रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। लिख लें, ये आयतें थी जिन्होंने हज़रत उमर के दिल में छेद कर दिया था। इन आयतों को सुन रहे थे और जो सोच रहे थे ना उसे अगली आयत में वही आ रहा था। यानी दिल में ईमान सूरत अल हाक्का की इन आयतों पे आया और ज़ुबान पे सूरत मरियम की आयतें अपनी बहन से सुनकर आया जिनका नाम फातिमा था। अल्लाह करे हमारे भी दिल खुल जाए। ये तो रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, और अगर ये हम पर कोई बात बना लेता, यानी अपनी तरफ से कुछ बात गढ़ लेता, तो अलबत्ता इसका हम दायां हाथ पकड़ लेते, फिर इसकी शाहरग काट देते, फिर तुम में से कोई भी इससे रुकने वाला ना होता। यकीनन ये कुरान परहेजगारों के लिए नसीहत है। हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में से बाज़ इसके झुटलाने वाले हैं। बेशक ये झुटलाना कुफार पर हसरत है, और बेशक को शुबा ये यकीनी हक है। बस तो अपने रब्बे अजीम की पाकी बयान कर। आप और मैं भी कह दें, सुभान रब्बियल अजीम। क्या सीखा? नसीहत कबूल करनी है, अल्लाह से डर के रहना है, कुरान को झुटलाना नहीं, रब की तस्बीह बयान करनी है। तो सूरत अल हाका का पैगाम क्या है? क़यामत को हल्का न जानो। जिस तरह पिछली कौमों पर अजाब आया, तुम पर भी आ सकता है। दुनिया अल्लाह की रज़ा से गुजारो, और आखरत में अल्लाह तुम्हारी मर्जी देगा। यानी ये दुनिया रब चाही तो वो दुनिया मन चाही। आगे जी सूरत मारिज, करेक्टर बिल्डिंग का आपको यहाँ एक पूरा किरदार दिखेगा इंशाल्लाह। सूरत 70 है, 44 आयात है, और सीढ़ियों वाले आसमान की तरफ इशारा है मारिज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साल साइलुम बियज़ा बिम वाक़े। रुकू नंबर 7 है, आयत 1 से 35। अल्लाह की निगाह में पसंदीदा किरदार। एक सवाल करने वाले ने इस अजाब का सवाल किया जो वाज़े होने वाला है, कुफार पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं। इस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूह चढ़ते हैं, एक दिन में जिसकी मकदार 50,000 साल की है। बस तो अच्छी तरह सब्र कर, बेशक ये अजाब को दूर समझ रहे हैं और हम इसे करीब देखते हैं। जिस दिन आसमान मिसल तेल की तलछट के हो जाएगा और पहाड़ मिसल रंगीन ऊन के हो जाएंगे, और कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। इसको हाईलाइट करें, वला युसलु हमीमुन हमीमा। आपकी सहेलियाँ उस दिन आपका हाल नहीं पूछेंगी। युबस्सरूनहुम, देखे जा रहे होंगे, एक दूसरे को दिखाए जा रहे हैं। हालांकि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे, गुनाहगार उस दिन के अजाब के बदले फ़दिये में अपने बेटों को, अपनी बीवी को और अपने भाई को और अपने कुंबे को, जैसे पनाह देता था, और वे ज़मीन के सब लोगों को देना चाहेगा ताकि ये इसे निजात दिला दे, मगर ये हरगिज़ ना होगा। यकीनन वो शोले वाली आँख है जो मुंह और सर की खाल खींच लाने वाली है। वो हर उस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता और मुंह मोड़ता और जमा करके संभाल रखता है। बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया गया, थुड़दिला। जब इसे मुसीबत पहुंचती है तो हड़बड़ा उठता है, और जब राहत मिलती है तो बुखल करने लगता है। हाँ, मगर अब ये करेक्टर बिल्डिंग की आयात है, इनको ज़रा पॉइंट आउट कीजिएगा। मगर वो नमाजी जो अपनी नमाजों पर हमेशगी करने वाले हैं और जिनके मालों में मुकर्रर हिस्सा है, मांगने वालों का भी और सवाल से बचने वालों का भी, और जो इंसाफ के दिन पर यकीन रखते हैं, जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, बेशक इनके रब का अजाब बेखौफ होने की चीज़ भी नहीं, और जो लोग शर्मगाहों की हराम से हिफाजत करते हैं। हाँ, इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जिनके वो मालिक हैं, इन्हें कोई मलामत नहीं। अब जो कोई इसके अलावा राह ढूंढेगा तो ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले होंगे। आज कितने लोग हदों को भी पार करके, अल्लाह हमारी नस्लों के दीन ईमान की हिफाजत करे। और जो अपनी अमानतों को और अपने कौल इकरार का पास रखते हैं, और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और कायम रहते हैं, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज्जत वाले होंगे। आपको ये आयतें पढ़ते हुए सूरत मोमिनून याद आई? ये पैकेजेस हैं कुरान में, थोड़े थोड़े अरसे के बाद कि अपने आप को चेक कर लो क्या पता चला कि कमज़ोर दिल लोग आखिरत के बारे में शुबहात का शिकार होते हैं, दुनिया के बारे में शहवात का शिकार होते हैं, ख्वाहिशात सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं। इलाज क्या है थोड़े दिलेपन का? नमाज को अच्छे से अदा करना। नमाज की पाबंदी गुस्से, खुशी और गम की इंतहा को कम कर देती है। नमाज में दिल को हाजिर रखना है और इत्मीनान और सुकून वाला रवैया इख्तियार करना है। ये है जज्बातियत से बचाने वाली चीज़। हफ्ते के दिन में हमें 5 नमाज़ों में ना सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है। घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, किसी को गुस्सा आए, चलो उठो, वजू करो, वस्तईन बिसब्री वस्सलाम, सब झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे जैसे जोश नहीं ख़त्म हो जाता। क्या सीखा? रब के अजाब से डरना है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, अमानतों की हिफाजत करनी है, अहद को पूरा करना है, गवाही पर कायम रहना है और नमाजों की हिफाजत करनी है। और आगे आयत नंबर 36 से 44 में, अल्लाह मशरिकों और मगरिबों का मालिक है। इस पैगाम को अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दिया। फ़मा लिल्लज़ीन कफ़रू क़िबलक मुहतदीन, बस कुफार को क्या हो गया है कि वो तेरी तरफ दौड़ते आते हैं, दाएं और बाएं से गिरोह के गिरोह, यानी अल्लाह के नबी पे जो गुस्सा आता था ना, उनको कुरान सुन के उसकी तरफ इशारा है। क्या इनमें से हर एक ये तवक्को करता है कि वो नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा? ऐसा हरगिज़ ना होगा। हमने इन्हें इस चीज़ से पैदा किया जिसे वो जानते हैं, बस मुझे कसम है मशरिकों और मगरिबों के रब की, हम यकीनन कादिर हैं इस पर कि इनके इवज़ इनके अच्छे लोग ले आएं, और हम आजिज़ नहीं हैं। बस इन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दे, यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से जा मिलें जिसका इनसे वादा किया जाता है, जिस दिन ये कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे, गोया कि वो किसी जगह की तरफ तेज़ तेज़ जा रहे हैं। नोट करें, बिस्तर से नहीं निकलते थे फजर की अजान सुन के, कब्रों में से निकलेंगे। और इनकी आंखें झुकी हुई होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी, ये है वो दिन जिसका इनसे वादा किया जाता था और इनको यकीन नहीं था। तो क्या पता चला कि दुनिया के खेल तमाशों में वक्त ज़ाया नहीं करना। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। जन्नत को अमाल का बदला समझते हुए अमाल को बेहतर बनाना है। तो सूरत मारिज का मैसेज क्या है? अल्लाह से बेमकसद चीज़ का तकाजा नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, माल का हरीस नहीं बनना, कम हिम्मत इंसान नहीं बनना, और नमाज की पाबंदी करनी है। आगे सूरत नुह में, अमली तौर पे एक दाईये दीन कितना डिटरमिन होता है, कितनी इस्तकामत होती है कि 950 साल तक रिस्पांस भी नहीं मिल रहा और वो खड़े हैं। कैसे? आइए देखें, 71 नंबर की सूरह 28 आयात हैं। अंबिया किराम के नामों पे आखिरी सूरत, कौन कौन सी बड़ी दोहराएंगे? इब्राहिम, यूसुफ, यूनस, हूद, मोहम्मद और नूह। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही यनन्ज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। आयत 1 से 20, रुकू नंबर 9 है। दिन रात दावते हक देनी है, रात दिन की कोशिशों के बगैर दीन के पौधे पे बहार नहीं आती, याद रखिएगा। आप किसी से भी पूछ लें, मार्क्स एंड स्पिंजर वालों से पूछ लें, वो कहेंगे दिन रात मेहनत की है तो ब्रांड बना। अपने मुल्क में 2-4 ब्रांड्स वालों से जाकर पूछिए सुनाएं, वो कहते हैं जनाब ये एक दिन में नहीं हुआ, रात दिन मेहनत की हमने। अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल करे, सही रुख पे लगा दे। यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और ख़बरदार कर दो इससे पहले कि इनके पास दर्दनाक अज़ाब आ जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और इसी से डरो और मेरा कहा मानो, तो वो खुद तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मौखर नहीं होता, काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया, इन्नी दाउतुक उम्मी लैलन व नहारा, लेकिन रिजल्ट्स देखिएगा, मगर मेरे बुलाने से ये लोग और ज़्यादा भागने लगे। रिएक्शन हो जाता है ना कुछ लोगों को, कहते हैं आप कहते क्यों इतना, अब नहीं हम आएंगे। बच्चे को भी माँ 1 से 2 बार नमाज के लिए कहते तो कहते मैंने नहीं पढ़नी, अब ना पढ़ो। मैंने जब कभी इन्हें तेरी बख्शिश के लिए बुलाया, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाली, वी डोंट वॉन्ट टू लिसन, और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और अड़ गए, मुंह पे कपड़ा डाल दिया कि हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। फिर बड़ा तकब्बुर किया। फिर मैंने इनको बा आवाज़ बुलंद बुलाया, यानी ऊंची आवाज़ से बुलाया, और बेशक मैंने इनको ऐलानिया भी कहा और चुपके चुपके भी, यानी हर पॉसिबल वे यूज़ किया। और मैंने कहा अपने रब से अपने गुनाह बख्शवाओ और माफ़ी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान को खूब बरसता हुआ छोड़ देगा और तुम्हें खूब पै दर पे माल और औलाद में तरक्की देगा। अब ये नोट कर लीजिएगा, फजीलते हैं किसकी? अस्तगफार की। और तुम्हारे लिए नहरें निकाल देगा। तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की बरतरी का अकीदा नहीं रखते, हालांकि इसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने ऊपर तले किस तरह 7 आसमान पैदा कर दिए, और इनमें चाँद को खूब जगमगाता बनाया है और सूरज को रोशन चिराग बनाया है, और तुमको ज़मीन में एक ख़ास एहतमाम से उगाया है, फिर तुम्हें इसी में लौटा ले जाएगा और एक ख़ास तरीके से फिर निकालेगा। और तुम्हारे लिए ज़मीन को अल्लाह ताला ने फर्श बना दिया ताकि तुम इसकी कुशादा राहों में चलो फिरो। तो हज़रत नूह में इतनी डिटर्मिनेशन कैसे थी? लिखिए, जज्बाती इंसान नहीं थे। आज आप अपने आप से वादा करें, मैंने जज्बाती नहीं होना। पहाड़ गुजर जाए, आंधी गुजर जाए, तूफान गुजर जाए, बर्दाश्त कीजिए। बड़े काम करने वालों के हौसले बड़े होने चाहिए। बच्चे होते हैं बात बात पे रोते, बात बात पे हाइपर होते, उछलते। 4 बच्चे आ जाएं तो ऐसे लगता है घर अस्तबल बन गया। ये बच्चों की आते हैं, ठंडे ठार रहिए। किसी ने घड़े से कहा, तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? मिट्टी का घड़ा, पानी डाल दो तो फ्रीज की तरह ठंडा पानी हो। कहा, इतने ठंडे कैसे रहते हो? कहा, मुझे अपनी औकात याद है। यकीन करें, अगर मुझे आपको अपनी औकात याद हो ना, तो हम कभी ये ना कहे मैंने ये सोचा, मैंने ये करा, मैंने ये सोचा, ये हुआ। बस यही कह दिया करें, अल्लाह जो करा ले, जहाँ भी हैं हर चीज़ में अल्लाह के ऊपर डाल दें। तो हज़रत नूह कौन थे? अल्लाह के इताअत गुजार बंदे थे, नेक बंदे थे, दावत और तबलीग में ज़िंदगी गुजारती और सिला रहमी करने वाले थे। आपने मैंने भी यही काम करने हैं, रात दिन दावत हक की तरफ लोगों को बुलाना है, अल्लाह की इताअत करनी है, दावत हक के मुकाबले में तकब्बुर नहीं करना, रब से माफ़ी मांगने की दावत देनी है। रुकू नंबर 10 आयत 21 से 28। वालदैन और मोमिनीन के लिए दुआएं करना, बड़ी खूबसूरत दुआ आने वाली है जो कि आप में से अक्सर लोग नमाज़ों में पढ़ते हैं। काला नूह रब्बी नहुम सऊनी, नूह अलैहि सलाम ने कहा है, मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने तो मेरी नाफरमानी की और ऐसों की फरमाबरदारी की जिनके माल और औलाद ने इनको यकीनन नुकसान ही में बढ़ाया, और इन लोगों ने बड़ा सख्त फरेब किया और कहा उन्होंने कि हरगिज़ अपने माबूदों को ना छोड़ना, और न बुद और सुआ और यगूस और याऊक और नसर को। नोट कर लें, ये 5 उनके बुत थे जिसको आप पंचतन पाक कह सकते हैं ना। इन 5ों को पूजते थे, ख़ास तौर पर ये बड़े थे और भी बहुत से थे, और उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया। इलाही तो इन जालिमों की गुमराही और बढ़ा। ये लोग बसबब अपने गुनाहों के डबो दिए गए और जहन्नुम में पहुंचा दिए गए, और अल्लाह के सिवा अपना कोई मददगार उन्होंने ना पाया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे पालने वाले, तू रूए ज़मीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो यकीनन ये तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और ये फाजरों और ढीठ कुफार ही को जन्म देंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप पर जो भी ईमानदार होकर मेरे घर में आए, और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे, और कुफार को सिवाय बर्बादी के और किसी बात में ना बढ़ा। एक मर्दे मोमिन की पुकार पे ऐसा आसमान और ज़मीन बरसा कि पूरी ज़मीन पे पानी खड़ा हो गया। तो क्या सीखा? कि वालदेन, औलाद और मोमिनों की मगफरत की दुआएं करनी है, रसूलों की पैरवी करनी है, बुरी तदबीरों से बचना है, झूठे माबूदों की बंदगी नहीं करनी। मुहासबा करते हैं अपना इस सूरत को पढ़ के। क्या मैं अल्लाह तआला की तरफ बुलाने वालों की कदर करती हूँ? क्या मैं रिश्तों को निभाती हूँ? क्या मैं शऊर के साथ इस्तिग़फ़ार करती हूँ? ज़रा कहिए तो सही। दिल दिमाग के साथ अपने गुनाहों उसको दिल में रखते हुए इस्तिग़फ़ार करेंगे ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। अल्लाह हम सब से राज़ी और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। आगे सूरत जिन में एक पूरा दावा कोर्स है, तबलीग कैसे, 72 नंबर की सूरत है, 28 आयात हैं। بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. آپ کو یاد ہے پیچھے ہم نے وادی نخلہ میں جنات کے گروہ کی بات کی تھی، کون سی سورت تھی؟ سورت احقاف. اب یہ وہی جن وہاں سے نکلے اور اپنی قوم کو جا کر پیغام دے رہے ہیں. رکوع نمبر 11 آیت 1-19. اللہ کی شان بہت اعلیٰ اور عرفا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک میرے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا. دیکھیں ان کا عقیدہ کتنی جلدی اچھا ہو گیا. اور یہ کہ ہم میں سے ایک بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں لگائیں. بات یہ ہے کہ چند انسان بس جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا. اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شولوں سے پر پایا. اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاقت میں پاتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا، یعنی وہ خود ہی گیس کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا چینج کیسے آ گیا کہ ہمیں آسمانوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے. اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں سے نیکوکار ہے اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، اور ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے تھے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر ہم اسے ہرا سکتے ہیں. ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہیں، اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا. اب یہاں دیکھیے کہ جیسے انسانوں میں نیک اور بد ہے نا، جنوں میں بھی ہے. ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہے اور بعض بے انصاف ہیں. بس جو فرما بردار ہو گئے تو انہوں نے راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. ارے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو ہم یقیناً انہیں بہت وافر پانی پلاتے. نوٹ کیجئے، نیکیوں سے رزق بڑھتا ہے. اللہ اس ملک میں نیکیوں کو عام کرے تاکہ ہمارے ملک کی غربت دور ہو جائے، تاکہ ہم اس میں انہیں ازما لیں. اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں. اللہ ان مسجدوں کو اپنے لیے خالص کرتے. کیا سیکھا؟ قرآن پاک پر ایمان لانا ہے، ہدایت پہ ثابت قدم رہنا ہے، مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، اور حق سے منحرف نہیں ہونا. رکوع نمبر 12-20-28 سورت کا آخری رکوع ہے. اللہ کے پیغامات کو پہنچانا ہے. قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں. کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا. البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آنکھ ہے، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے. ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے. پسند قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے. کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا. وہ غیب کا جاننے والا اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے. آپ دیکھیے صرف ایک کورس کیا جنہوں نے اور کتنے پیارے مبلغ بن گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح طریقے سے دعوت دینے والا بنائے. کیا سیکھا؟ رب کو پکارنا ہے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، सिर्फ़ अल्लाह से पनाह तलब करनी है और अल्लाह ताला की बात और पैगामात को पहुंचाना है। सूरत जिन का पैगाम क्या है? सच्ची हिदायत जहां से मिले ले लो और ज़िंदगी को गफलत में ना गुजारो। आगे है जी, बिल्कुल इब्तदाई दौर की वही की सूरतें, सूरत मुज़म्मिल। बिल्कुल अभी नबी सल्लम को नबूवत मिले थोड़ा ही अर्सा हुआ था कि ये दोनों सूरतें मुज़म्मिल और मुद्दसर ये जोड़ा है। इसी तरह से आगे आप देखेंगे कि जोड़ा जोड़ा की सूरतें बहुत सारी आने वाली हैं। 73 नंबर की सूरह 20 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल्लैला इल्ला क़लीला, निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला, औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआना तरतीला, इन्ना सनुल्की अलैका क़ौलन सक़ीला। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत भारी चीज़ है। रुकू नंबर 13 है, आयत 1 से 19। अल्लाह ताला को अपना वकील बनाना है। ऐ कपड़े में लिपटने वाले, रात के वक्त नमाज में खड़े हो जाओ मगर कम, आधी रात या इससे भी कुछ कम कर ले या इस पर ज़्यादा बढ़ा दे, और कुरान ठहर ठहर कर साफ पढ़ा करो। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यकीनन हम तुझ पर बहुत भारी बात अन करीब नाजिल करेंगे। ये कौन सी थी? इबलाग, तबलीग, भीड़ों के छज्जे में हाथ डालना है और अल्लाह इसके लिए रातों को खड़ा करता है। याद रखिए, रात को अल्लाह के आगे नहीं खड़े होंगे ना, तो दिन को लोगों के सामने नहीं खड़े हो सकेंगे। बेशक रात का उठना दिल जमाई के लिए इंतहाई मुनासिब है और बात को बिल्कुल दुरुस्त कर देने वाला है। यकीनन तुझे दिन में बहुत शुगल रहता है, फोकस तो बंदा रात को ही होता है ना, तो अपने रब के नाम का जिक्र किया कर और तमाम मखलूकात से कट कर इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। व तबत्तल इलैही तब्दीला, मशरिक़ व मग़रिब का परवरदिगार, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो इसी को अपना कारसाज़ बना ले और जो कुछ वो कहें वो सहता रहे और वज़ादारी के साथ इनसे अलग थलग रहे, और मुझे और इन छुटलाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दे और इन्हें ज़रा सी मोहलत दे। यकीनन हमारे पास सख्त बेड़ियाँ हैं और सुलगती हुई आग यानी जहन्नम, और हलक में अटकने वाला खाना है। सोचिए ज़रा, हमारे तो गले से ना गुजरे कोई चीज़ जब तक कोल्ड ड्रिंक्स ना हो, और वहाँ कांटों वाला खाना और दर्द देने वाला अजाब है। जिस दिन ज़मीन और पहाड़ थर थराएंगे और पहाड़ मिसल भुरभुरी रेत के टीलों के हो जाएंगे। बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेजा, जैसे कि हमने फ़िरौन के पास रसूल भेजा था, तो फिरौन ने इस रसूल की नाफरमानी की, तो हमने इसे सख्त वबाल की पकड़ में पकड़ लिया। तुम अगर काफिर रहे तो उस दिन कैसे पना पाओगे? यौम यजलुल विलदान शीबा, तवालत की वजह से या सख्ती की वजह से, वो दिन कि जिस दिन में बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, वो दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, जिस दिन आसमान फट जाएगा और अल्लाह का ये वादा होकर ही रहेगा। बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे। तो लिखिए, बड़ी अहम आयत है। अजीम जिम्मेदारियां संभालने के लिए 5 काम करने पड़ेंगे आपको। मुझे दिल करता है बड़े काम करने को। इबलाग की जिम्मेदारी चाहते हैं, लोगों की हिदायत का जरिया बनना चाहते हैं, तो नंबर 1, रात में खलवत की इबादत, तन्हाई में इबादत। फिर कुरान को समझ कर पढ़ना, ज़ुबान और दिल को ज़िक्र इलाही में मशगूल रखना, इबादत के वक्त सबसे तरके ताल्लुक़ रखना, और अल्लाह पर तवक्कुल। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। और सूरत मुज़म्मिल की आयत 17 पर एक हदीस ले लीजिए, बुखारी की 4741। क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अपनी औलाद में से जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग कर दो। वो कहेंगे, अल्लाह ताला क्या रेशो रखूँ? फरमाया, हर 1,000 में से 999 जहन्नुम में और 1 जन्नत में। और ये ऐसा वक्त होगा कि पेट वाली का हमल गिर जाएगा और बच्चा फिक्र के मारे बूढ़ा हो जाएगा, यानी जब बचपन में मरा हो, तो क़यामत के दिन ऐसे लगेगा जैसे लोग नशे में। सूरत हज के शुरू में भी हमने पढ़ा। सहाबा किराम पर यह हदीस बहुत गिरां गुजरी, उनके चेहरे मारे डर के बदल गए। अल्लाह करे हमारे दिल भी बदल जाएं। क्या सीखा? रात में क्याम करना है, कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ना है, रब का जिक्र करना है, इबादत के वक्त सबसे कट कर रब ताला का हो जाना है, अल्लाह ताला को अपना वकील बनाना है और रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार करना है। और आगे एक आयतकर को। यूनिक बात नोट कीजिएगा, सूरत मुजम्मिल के दो रुकू, पहले में 19 आयतें और दूसरे में एक आयत। रुकू नंबर 14 आयत नंबर 20, अपने लिए भलाइयाँ आगे भेजना। इसको ज़रा शौक से सुनिएगा क्योंकि आपके आगे के सफ़र की बातें हैं। इन्ना रब्बक यालमु अन्नक तकूम, आपका रब बखूबी जानता है कि आप और आपके लोगों के साथ एक जमात करीब दो तिहाई रात के और आधी रात के और एक तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ती है, और रात दिन का पूरा अंदाज़ा अल्लाह ताला ही को है। वो खूब जानता है कि तुम औकात का शुमार ठीक ना कर सकोगे, बस इसने तुम पर मेहरबानी की, बस जितना कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो। वो जानता है कि तुम में से बास बीमार भी होंगे, बस दूसरे ज़मीन में चल फिर कर अल्लाह का फजल यानी रोज़ी भी तलाश करेंगे, और कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे, बस तुम बआसानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ो, और नमाज की पाबंदी किया करो, और ज़कात देते रहा करो, और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो, और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसे अल्लाह ताला के हाँ बेहतर से बेहतर और सवाब में बहुत ज़्यादा पाओगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। दुआ करें कि हमारा ये पारा भी हमारे लिए बाक़ियातुस सालेहात बन जाए। क्या सीखा कि अल्लाह के फजल में से तलाश करना है, जिहाद करना है, नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी है, अपने लिए भलाइयाँ आगे भेजना है। अभी तो थोड़ा सा वक्त है ज़िंदगी में, बाद में तो मुश्किलात ही आने वाली होती हैं। बुढ़ापे में तो आपको तक इबादत भी नहीं होती, और वो भी हो तो उसमें शक ही रहता है कि वज़ू भी ठीक था कि नहीं था। इसीलिए अल्लाह को अच्छा कर्ज देना। सूरत मुजम्मिल का पैगाम क्या है? रात की कुछ घड़ियों में क़याम करो, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, लोगों की बातों पे सब्र करो ताकि दिन में इबलाग हो जाए। तो अभी हमने क्या पढ़ा? क़ियामुल लैल कितना? नेसफ़हु मिन क़ुस मिनहु क़लीला। अगली सूरत मुद्दसर क़ियामुन नहार दिन में खड़ा होना। कहाँ? कुम व फानज़िर, कुम खड़े हो जाओ, फानज़िर और डराओ। पहले पढ़ लें फिर बात करते हैं। 74 नंबर सूरह है, 56 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फानज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर व ला तमनुन तस्तकसिर। 1 to 31 रुकू नंबर 15 है। आपने ईमान को बढ़ाना है, ए कपड़ा ओढ़ने वाले खड़ा हो जा और आगाह कर और अपने ही रब की बड़ाइयाँ बयान कर। इसको नोट करिएगा, व रब्बक फकब्बिर। इस टाइटल का एक लेक्चर भी है हमारे पास। अपने कपड़ों को पाक रखा कर और नापाकी को छोड़ दे, और एहसान करके ज़्यादा लेने की ख्वाहिश न कर, और अपने रब की राह में सब्र कर। बस जब के सूर में फूक मारी जाएगी वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा, और जो कुफ्फार पर आसान न होगा। मुझे और उसे छोड़ दे जिसे मैंने अकेला पैदा किया है और इसे बहुत सा माल दे रखा है और हाजिर बाश फर्जंद भी यानी बेटे, और मैंने इसे बहुत कुछ कुशादगी दे रखी है, फिर भी इसकी चाहत है कि मैं इसे और ज़्यादा दूँ। नहीं, ये हमारी आयतों का मुखालिफ है। अन करीब मैं इसे एक सख्त चढ़ाई चढ़ाऊँगा। इसने गौर करके तजवीज़ की, इसे हलाकत हो कैसी तजवीज़ सूझी, वो फिर गारत हो किस तरह अंदाज़ा किया। इसने फिर देखा, फिर तेवरी चढ़ाई और मुंह बनाया, फिर पीछे हट गया और गरूर किया, और कहने लगा ये तो सिर्फ जादू है जो नकल किया जाता है, सिवा इंसानी कलाम के कुछ भी तो नहीं। कुरान की तासीर को इन बातों से कम करते थे। मैं अन करीब इसे दोजख में डालूंगा, और तुझे क्या खबर कि दोजख क्या चीज़ है? ना वो बाकी रखती है ना छोड़ती है, खाल को झुलसा देती है। और इसमें 19 यानी 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। हमने दोजख के दरोगे सिर्फ फरिश्ते रखे हैं, और हमने इनकी तादाद सिर्फ कुफार की आजमाइश के लिए मुकर्रर की है ताकि अहले किताब यकीन कर लें और ईमानदार ईमान में और बढ़ जाएं, और अहले किताब और मुसलमान शक न करें, और जिनके दिलों में बीमारी है वो और काफिर कहें कि इस बयान से अल्लाह तआला की क्या मुराद है। इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। ये तो कुल बनी आदम के लिए सरासर पिंदो नसीहत है। अल्लाह के नबी गारे हिरा में एक मुद्दत तक तन्हाई पसंद हुए। जब वो दिन पूरे करके पहाड़ से उतरे तो आपको ऊपर से आवाज़ दी गई। आप खुद फरमाते हैं कि मैंने उस आवाज़ की तरफ़ देखा, मुझे कोई चीज़ दिखाई ना दी। फिर बाईं तरफ़ देखा, इधर भी कोई नहीं, इधर देखा कुछ नहीं, पीछे देखा उधर भी कुछ नहीं। फिर जब मैंने अपना सर बिल्कुल ऊपर उठाया तो मुझे एक चीज़ दिखाई दी। फिर मैं खदीजा के पास आया और इनसे कहा, दस्सरूनी यज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, दोनों लफ्ज़ आते हैं, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझ पर ठंडा पानी डाल दो। फरमाया कि फिर उन्होंने मुझे कपड़ा उड़ा दिया और ठंडा पानी मुझ पर बहाया। फरमाया फिर ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फानज़िर व रब्बक फकब्बिर। और फिर अल्लाह के नबी ऐसे खड़े हुए, 23 साल खड़े ही रहे, कुम फानज़िर। हम कितनी जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करके हम थक जाते हैं। ये बुखारी की रिवायत 4922 है। तो अल्लाह के लिए सब्र करो, वाली रब्बी का फसबिर, इससे क्या मुराद है? चार चीज़ें नोट कीजिएगा। नंबर एक, दीन के रास्ते में आने वाली मुश्किलात पे सब्र करना है। अल्लाह ताला जिस बात को करने से रोक दे इस पर सब्र के साथ रुकना है। जिस पर अमल करने का हुक्म दे इस पर सब्र के साथ अमल करना है। और नेक अमाल करके सब्र के साथ सिर्फ अल्लाह से अजर की उम्मीद रखनी है। क्या सीखा? रब की बड़ाई बयान करनी है, अपने कपड़े पाक रखने, यानी हर मुमकिन तौर पर अपने दामन पे लगे हुए धब्बों को दूर करना है। वो इमाम बुखारी की बात याद कर लीजिए, 1,000 अशरफियाँ पानी में फेंक दी थी कि कहीं को इनके किरदार पे ये धब्बा ना लग जाए कि वैसे तो हदीस का काम करते हैं और फलां शख्स की अशरफियाँ चोरी कर ली। गंदगी से दूर रहना है, रब के लिए सब्र करना है, अपने ईमान को बढ़ाना है और शक में नहीं पड़ना। और आगे आखिरी आयात हैं सूरत की, 32 से 56, रुकू 16, जहन्नुम में ले जाने वाले आमाल, कल्ला वल कमर वल लैली इज़ अदबर। सच कहता हूँ कसम है चांद की और रात की जबकि वो पीछे हटे और सुबह की जबकि रोशन हो जाए, कि यकीनन वो जहन्नुम बड़ी चीज़ों में से एक है, बनी आदम को डराने वाली, यानी इससे जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे, हर शख्स अपने अमाल के बदले में गिरवी है। इसको हाईलाइट करें, अच्छे काम करते जाएं, जिस्म के अज़ा को आज़ाद कराते जाएं, मगर दाएं हाथ वाले अहले जन्नत बाला खानों में बैठे वो सवाल करते होंगे जहन्नमियों से, तुम्हें दोजख में किस चीज़ ने डाला? वो जवाब देंगे, वलम नकुम मिनल मुसल्ली। अल्लाह हु अकबर। अल्लाह हमारी नमाज़ों को सीधा कर दे, अपनी नमाज़ों के पीछे पड़ जाए। जितना आप अपने बच्चों की नमाज़ों के पीछे पड़ते हैं ना, उतना अपनी नमाज़ों पे पढ़ें, आप देखिएगा किसकी तासीर से वो भी ठीक हो जाएंगे। ना मिसकिनों को खाना खिलाते थे और हम बहस करने वाले इनकारियों का साथ देकर बहस और मुबाहसे में मशगूल रहा करते थे, और रोज़े जजा को झुटलाते थे यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। फिर इन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश नफ़ा ना देगी। इन्हें क्या हो गया है कि नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं, गोया कि वो बिदके हुए गधे हैं जो शेर से भागे हों। आज भी देखिए दुनिया में लोगों को नसीहत अच्छी नहीं लगती, बल्कि इनमें से हर एक शख्स चाहता है कि इसे खुली हुई किताबें दी जाएं। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि ये क़यामत से बेखौफ हैं। सच्ची बात तो ये है कि ये कुरान एक नसीहत है, अब जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे, और वो इस वक्त नसीहत हासिल करेंगे जब अल्लाह चाहे। वो इसी के लायक है कि इससे डरें और इस लायक भी कि वो बख्शे। दुआ करिए अल्लाह में नसीहत लेने वालों में बना दे। क्या सीखा? नमाज पढ़नी है, मिस्कीन को खाना खिलाना है, दीन में वैसे नहीं करनी, और जजा के दिन को नहीं झुटलाना।